हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। त्रिशा ने उसकी बात सुनकर हल्की हंसी हंसी और कहा, तुम्हारा ये स्टाइल मुझे हमेशा पसंद आता है वेदांश, तुम जानते हो कि किसे कैसे इम्प्रेस करना है। अंबिका, जो उन दोनों के पीछे उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, वो अब और भी असहज महसूस कर रही थी। उसने अपनी निगाहें वेदांश और त्रिशा पर जमाई रखीं और उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। त्रिशा का वेदांश के लिए ऐसा व्यवहार और जानबूझकर वेदांश के नज़दीक आना, बार बार बहाने से उसका हाथ पकड़ लेना, ये सब अंबिका को कहीं ना कहीं कचूट रहा था। वो चुपचाप ये सब देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उसे भी समझ आ रहा था कि त्रिशा शायद इस वक्त काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वेदांश उसके साथ ऐसे पेश आ रहा था। नहीं तो वेदांश किसी की भी ऐसी बातें सुनने वालों में से नहीं था। लेकिन पूरी स्थिति क्या थी, इस बारे में अंबिका को कोई अंदाज़ा नहीं था। वेदांश ने त्रिशा को डाइनिंग एरिया में ले जाकर बैठाया और बाकी लोगों को भी बैठने का इशारा किया। वेदांश ने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग आराम से बैठो, डिनर कुछ ही देर में परोस दिया जाएगा। त्रिशा ने वेदांश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेदांश, तुम्हारी इतनी अच्छी होस्टिंग देखकर मैं वाकई इम्प्रेस हो रही हूँ। मुझे लगता है हमारे बिजनेस के साथ साथ हमें कुछ और भी बात करनी चाहिए। वेदांश को उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की। उसने बस सिर हिलाया और कहा, तुम्हें जो सही लगे। त्रिशा ने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्या ये सच है? वेदांश ने एक पल के लिए चौंकते हुए उसकी तरफ देखा, फिर शांत स्वर में कहा, हाँ, मैंने शादी कर ली है, लेकिन ये बातचीत के लिए सही वक्त नहीं है। त्रिशा ने उसे देखते हुए कहा, बिल्कुल, मैं समझती हूँ, लेकिन कभी कभी प्रोफेशनल के अलावा भी बातें करनी चाहिए। वेदांश ने बात बदलते हुए कहा, तुम्हें डिनर कैसा पसंद है त्रिशा? कुछ स्पेशल ऑर्डर करना चाहोगी? तुम्हारे लिए इंस्टेंट वो भी बन सकता है। त्रिशा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में हो तो सब कुछ स्पेशल ही होगा, मुझे कुछ भी चलेगा, बस तुम मेरे साथ हो। अंबिका, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, त्रिशा की बातों को सुनकर और भी असहज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब पर कैसा रिएक्शन दे। वेदांश ने खुद को शांत रखा और औपचारिक बातचीत शुरू करने का इरादा किया। तो त्रिशा, वेदांश ने बात शुरू की, तुमने कहा था कि काफी सारे निवेशकों को लेकर आओगी, लेकिन यहाँ सिर्फ दो हैं, क्या बाकी लोग नहीं आ सके? त्रिशा ने हल्के से हंसी और अपने गिलास से पानी का एक घूंट लिया। वेदांश, मैं समझ सकती हूँ कि तुम और भी निवेशकों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारी कंपनी की हालत इस वक्त काफी खराब है। मार्केट में तुम्हारा नाम भी अच्छी स्थिति में नहीं है। तुषार ने तुम्हारी कंपनी के खिलाफ काफी कुछ फहरा रखा है। इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ काम करने और निवेश करने के लिए तैयार हूँ। वेदांश ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर नजरें उठाकर कहा, मुझे पता है मार्केट में कुछ नकारात्मक बातें चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता था कि तुम कुछ ज्यादा निवेशकों को लेकर आओगी। मिस्टर मेहरा से तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। त्रिशा ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल इतने ही लोग राजी हुए हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं और भी लोगों को ला सकती हूँ। उसकी आवाज में एक खास किस्म की नरमी थी और उसकी मुस्कान में कुछ छिपा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई और बात इशारों में कह रही हो। वेदांश उसकी इस बात का अर्थ भली भांति समझ रहा था। त्रिशा के इरादे सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं थे, उसकी नजरों में कुछ और था जो वेदांश को बहुत असहज कर रहा था। तभी अचानक त्रिशा ने वेदांश का हाथ पकड़ लिया। वेदांश अचानक थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। त्रिशा ने नजरें उसकी ओर झुकाकर धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ वेदांश, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। वेदांश को उसके इरादे अब पूरी तरह साफ समझ में आ रहे थे। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन त्रिशा ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। सोच लो, उसने धीमी आवाज में कहा, हम दोनों के लिए ये एक अच्छा सौदा हो सकता है। वेदांश को अब घबराहट हो रही थी। वो जानता था कि त्रिशा क्या चाहती थी, लेकिन वह इस तरह के किसी भी निजी संबंध में उलझना नहीं चाहता था, खासकर तब जब उसकी शादी अंबिका से हो चुकी थी। तभी अंबिका डाइनिंग एरिया में आई। वो सबके लिए खाना परोसने आई थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि त्रिशा ने वेदांश का हाथ पकड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। वेदांश ने तुरंत अपना हाथ त्रिशा के हाथ से छुड़ाया और चुपचाप बैठ गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अंबिका की नजरें वेदांश पर टिक गईं, वह उसे गुस्से से घूर रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह अपने गुस्से को रोकने की कोशिश कर रही थी। खाना परोस दिया गया है, अंबिका ने कठोर आवाज में कहा। उसने प्लेट्स को टेबल पर लगभग पटकते हुए रखा और उसकी हरकतों से साफ था कि वह बहुत नाराज थी। वेदांश ने त्रिशा की तरफ नहीं देखा। वह अब तक समझ चुका था कि अंबिका को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वह त्रिशा से सीधे तौर पर कुछ कह नहीं सकता था। अंबिका अब वहाँ पर एक अच्छी बहू की तरह मेहमानों को परोसने के लिए आई थी और टेबल पर सबके सामने वो सिरामिक प्लेट्स रख रही थी। अंबिका ने आखिरी प्लेट टेबल पर रखी और बिना कुछ कहे लिविंग एरिया की तरफ चली गई। उसके कदमों की आवाज़ में गुस्से की झलक साफ थी और उसने जाते जाते बर्तन पटक दिए। वेदांश ने एक नज़र उसकी तरफ डाली, लेकिन वह कुछ कहने की हालत में नहीं था। त्रिशा ने वेदांश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हारी पत्नी को हमारा यहाँ डिनर पर आना अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज़ में एक चुभन थी, मानो वह वेदांश को चिढ़ा रही हो। वेदांश ने बिना त्रिशा की तरफ देखे जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस रिलेटेड काम में मैं कभी भी अपनी बीवी की राय नहीं मांगूंगा और ना ही वो इन सब में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं इन दोनों को अलग अलग रखता हूँ। पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ें अलग हों तभी बेहतर रहता है। त्रिशा ने हंसते हुए कहा, बिजनेस और निजी जिंदगी को अलग रखना बहुत मुश्किल होता है वेदांश, कभी कभी दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं। उसने फिर से उसकी ओर देखा, लेकिन वेदांश अब अपने खाने की प्लेट पर ध्यान दे रहा था, मानो वह इस बात से बचने की कोशिश कर रहा हो। डिनर की बातचीत अब काम से जुड़ी हुई थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। त्रिशा और वेदांश के बीच जो हुआ था उसका असर साफ दिख रहा था। वहाँ मौजूद बाकी सारे लोग भी इस बारे में अपनी राय रखने लगे थे। उन सबको वेदांश का बिजनेस प्रपोजल काफी हद तक बेहतर और काम का लगा था। वेदांश अब बिना किसी गड़बड़ के उस डिनर को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। उसने खुद को कंट्रोल करके रखा और कहा, हमारे अगले प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले करने होंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम इस निवेश में पूरी तरह से शामिल रहोगी त्रिशा। त्रिशा ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारे बीच अब कोई भी रुकावट ना आए। मेरा मतलब तो है हमारे बिजनेस रिलेटेड वर्क के बीच में। त्रिशा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और उसके चेहरे के उस भाव भंगिमा को देखकर वेदांश सब कुछ समझ गया। वेदांश ने उसकी बात को समझते हुए कहा, बिजनेस में तो कोई रुकावट नहीं आएगी त्रिशा, लेकिन उसके शब्दों के पीछे का अर्थ साफ था, वह किसी निजी रुकावट की बात कर रहा था। डिनर के दौरान त्रिशा जानबूझकर वेदांश के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी और बहाने से उसके हाथ या कंधे को स्पर्श कर रही थी, लेकिन अपनी तरफ से वेदांश ने त्रिशा के साथ अपनी दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की। वह त्रिशा के साथ किसी भी रिश्ते में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन त्रिशा ने बार बार उसकी ओर इशारों में बातें की, जिससे वेदांश और भी ज्यादा असहज हो गया।
डिनर खत्म होते ही त्रिशा ने अपनी स्पेशल मॉकटेल ड्रिंक का गिलास उठाया और वेदांश की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्या सोच रहे हो? जब अब सब फाइनल हो गया है, एग्जाम हो जाएं हमारे आने वाले कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट के नाम और हमारे साथ भी बस यूं ही बना रहे? वेदांश ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हम काम पर फोकस करेंगे त्रिशा, इसमें साथ बने रहने जैसी कोई भी बात नहीं है और जितनी जल्दी हो सके हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। त्रिशा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ कि तुम कितनी जल्दी इस पे काम शुरू करते हो। आज का प्रपोजल तो सबको समझ में आया, लेकिन काम शुरू करके मुझे शुरुआती मॉडल जरूर ईमेल कर देना, उसके बाद मैं देखकर अप्रूव करूँगी। वेदांश ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है त्रिशा, मैं अपने काम में कितना अच्छा हूँ और मैं किसी से भी अप्रूवल नहीं लेता, फिर भी तुमने ये बात बोली, इसका मतलब तुम्हें मेरे काम पर भरोसा नहीं है, तो फिर क्यों हो तुम यहाँ पर? वेदांश को गुस्से में देखकर त्रिशा ने बात संभालने वाले अंदाज में कहा, अरे वो बस मेरे फाइनल सिग्नेचर होंगे ना हर डॉक्यूमेंट में, बस उसके लिए ही बोल रही थी, बाकी मुझे तुम पर और तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है। डिनर खत्म होते ही त्रिशा के साथ आए हुए बाकी सारे लोगों ने विदा ली, लेकिन त्रिशा काफी आराम से अभी भी अपना डिनर खत्म कर रही थी। वो जानबूझकर काफी धीरे धीरे खा रही थी, क्योंकि उसे उन लोगों के साथ वहां से नहीं जाना था। वेदांश ने भी उन्हें बाहर तक छोड़ दिया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी अंबिका की ओर थीं, जो कहीं ना कहीं उसके रिएक्शन का इंतज़ार कर रही थी। क्रमशः